है गर हौसला कदम तो बढ़ा है हिम्मत ये तेरी सहारा तेरा तू चलना शुरू कर तू फिर देखना नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। سلسلہ ہے بہترین انسان کیسے بنے۔ آج دو احادیث مبارکہ پر گفتگو ہوگی اور ان دو احادیث میں متعدد امور بیان کیے گئے ہیں جو بہترین انسان کی بہترین خصوصیات ہیں۔ پہلی حدیث مبارک شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار امتی فیما انبأنی الملأ الاعلى لقوم یضحکون جہرا فی ساعت رحمت ربہم ويبكون سرا من خوف الشدة عذاب ربهم ويذكرون ربهم بالغداة والعشي۔ فرمایا، فرشتوں نے جو مجھے بتایا اس کے مطابق میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت کی وسعت دیکھ کر لوگوں کے سامنے خوب خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے خوف کی شدت کی بنا پر چھپ کر روتے ہیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تین اوصاف کے حامل بہترین امت ہیں، امت کے بہترین افراد ہیں۔ پہلا وصف کہ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تنہائی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے روتے ہیں اور صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تینوں اوصاف حقیقت میں ایسے ہیں کہ واقعتاً جو بتاتے ہیں کہ ایک بہترین انسان کی بنیادی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ جو پہلا وصف ہے، بلکہ جو پہلے دو اوصاف ہیں، کہ ایک طرف تو اللہ کی رحمت کی وسعت پر نظر ہے اور دوسری طرف اس کے قہر اور اس کے عذاب پر بھی نظر ہے۔ ان دونوں چیزوں کو کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے عذاب کا ڈر رکھنا، اور بہت مختصر الفاظ میں انہیں کہا جاتا ہے خوف و رجا، اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید۔ بندہ مومن اور مومن کامل وہ ہے جو خوف اور رجا دونوں ہی رکھتا ہے اور جس کا ایمان دونوں کے درمیان میں ہے، اسے ایک طرف اللہ کی رحمت پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اسے خدا کی طرف سے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ لہذا جس بندے میں یہ دونوں اوصاف پائے جاتے ہیں وہ بہترین افراد میں شامل ہیں۔ اب خوف اور رجا، یعنی خوف اور امید، خوف عذاب اور امید رحمت، یہ کس درجے کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ نے اسے سمجھنا ہو تو یہ دو فرامین جو ہیں یہ دیکھیں، ایک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور دوسرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دونوں یوں کہہ لیں کہ خوف اور امید، خوف و رجا کو بیان کرنے میں ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کے اور نہایت ہی عمدہ انداز میں بیان کرنے والے فرامین ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے سے فرمایا، یہ روایت ہے احیاء العلوم میں، تو مولا علی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح خوف کھاؤ کہ تمہارے خیال میں اگر تمام زمین والوں کی نیکیاں بھی تم اللہ کے پاس لے کر جاؤ تو تمہیں یہ ڈر ہو کہ کہیں تم سے ان نیکیوں کو قبول نہ کیا جائے بلکہ مسترد کر دیا جائے، اور دوسری طرف اللہ تعالی سے امید ایسی رکھو کہ تم یہ سمجھو کہ اگر تمام اہل زمین کی برائیاں بھی تم اس کے پاس لے جاؤ تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ہے या अपने जिस भी शहजादे को है, ये लोगों को समझाने के एतबार से और औलाद की तरबियत के एतबार से है, वरना आपके जो शहजादे हैं वो तो तकवा और खौफ खुदा और कुर्ब इलाही के आला मरातिब पर फाइज थे। लेकिन जो फरमान की गहराई है, जो इसकी डेप्थ है, आप इसको समझें कि एक तरफ तो आप ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला का ऐसा डर हो कि बंदे के पास अगर सारी दुनिया के लोगों की भी नेकियां हो तो जाहिरी एतबार से तो वो ये समझेगा कि जरा मुझसे तो बड़ा जन्नती कोई नहीं होगा, सारी दुनिया के अरबों लोगों की नेकियों के बराबर मेरी नेकी। तो अब बजाहिर अमल के एतबार से वो इस कदर अपने आप को अच्छा समझता है, लेकिन अल्लाह ताला का डर और खौफ और अजमत उसके दिल में ऐसी हो कि वो ये समझे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये नेकियां खुदा की बारगाह में पेश करूं और ये सारी की सारी नेकियां रद्द कर दी जाए, ये रद्द कर दी जाए कि इनमें रियाकारी है, ये रद्द कर दी जाए कि ये कामिल तरीके से अदा नहीं की गई, ये रद्द कर दी जाए कि इन्हें करने के बाद बंदा खुद पसंदी का शिकार हुआ था, ये रद्द कर दी जाए कि ये अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है। तो गोया इतनी नेकियां करके भी बंदे के दिल में खुदा का डर होना चाहिए और अपने अमल पर एतमाद नहीं होना चाहिए। तो ये है खौफ का आलम। दूसरी तरफ है रहमत। रहमत का मामला ये है कि बंदे के पास इतने गुनाह हो, उसने इतनी बुराइयां की हो कि गोया दुनिया जहान की सारी बुराइयां उसके अंदर है। अब इस एतबार से उसे ये डर तो जरूर होना चाहिए कि मेरे इन गुनाहों की वजह से मैं अजाब का मुस्तहिक हूं तो खुदा मुझे जहन्नम में ना डाल दे, लेकिन इसके साथ उसे अल्लाह ताला की रहमत पर ऐसा एतमाद और ऐसा भरोसा और ऐसी तवक्को और उम्मीद होनी चाहिए कि उसे ये लगे कि मेरी इतनी सारी बुराइयां और मेरे इतने सारे गुनाह और मेरी इतनी मासियतें, ये सारी की सारी मिलके रब की रहमत से बहुत छोटी है। क्योंकि खुदा ने फरमाया है वरहमती वसीअत कुल्ला शई, मेरी रहमत हर शय से ज्यादा वसी है, हर शय से बढ़कर है। तो लिहाजा अगरचे मैंने इतने गुनाह किए और इनकी वजह से मैं अजाब का मुस्तहिक हूं, लेकिन मैं अपने रहमान रहीम करीम गफूर गफार सत्तारुल गुयूब रब से उम्मीद रखता हूं कि वो अपनी रहमत से मुझे बख्श देगा। तो अब आप देखें कि नेकियां इतनी थी तो साथ में डर था कि कहीं ये मुस्तरद ना हो जाए, और गुनाह और बुराइयां इतनी थी लेकिन उसके साथ अल्लाह की रहमत से उम्मीद थी कि वो मौला अपनी रहमत से बख्श देगा कि वो बख्शने वाला है। इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इसीलिए फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। तो ये मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े खूबसूरत फरमान की कुछ तशरीह है। अच्छा, दूसरी तरफ हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम खौफ और मकाम रजा, यानी अल्लाह की रहमत की कैसी उम्मीद और अल्लाह का कैसा डर सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में था, आपके इस फरमान से आप जरा उसका अंदाजा लगाएं। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर आवाज दी जाए कि एक आदमी के अलावा सब लोग जहन्नम में चले जाए, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है वो तो मुस्तस्ना हो गए, बकिया जो गैर मासूम लोग हैं, अगर आवाज दी जाए कि एक आदमी के अलावा सब लोग जहन्नम में चले जाएं, वो या एक जन्नत में जाएगा, तो फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो जहन्नम से बच जाने वाला एक आदमी मैं ही हूंगा। और अगर आवाज दी जाए कि एक आदमी के सिवा सारे लोग जन्नत में चले जाएं, एक बंदा जहन्नम में जाएगा, तो फरमाया मुझे डर है कि कहीं वो जन्नत से महरूम रह जाने वाला शख्स मैं ही ना हूं कि वो मैं ही ना हूं। ये क्या है? ये अल्लाह की रहमत की उम्मीद और उसकी अजमत की वजह से उसकी नाराजगी का जो डर बंदा मोमिन के दिल में होना चाहिए, ये उसका इजहार है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला तो जानते थे कि नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने उनको जन्नत की बशारा दी। आप अशरा मुबशरा में से हैं, यानी वो 10 अफराद के जिनको एक जुमले में और एक फ्लो के अंदर नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये उनमें से। और इसके अलावा कितने मौके पर नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को जन्नत की बशारत दी। तो कतई तौर पर जन्नती है, लेकिन जो खुदा के खौफ का गलबा होता है और जो खुदा की रहमत की उम्मीद का गलबा होता है, तो उसका जहूर और इजहार इस अंदाज में होता है। इसे गोया हम अपने एतबार से अगर लें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैदान क़यामत में खुदा ये फरमाए कि सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो हम ये तमन्ना करें और ये उम्मीद करें कि वो जिस एक बंदे पर रहमत होगी वो मैं ही हूं। क्यों? इसलिए कि खुदा की रहमत के हम भी हकदार, तो हम उससे उम्मीद रखें कि वो रहमत हम पे ही फरमाए। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर ये हो कि सब जन्नत में चले जाए, एक बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, तो वो जो जिसे रोक दिया जाएगा, तो हमें डर हो कि कहीं वो नहीं ना। तो रहमत की उम्मीद और अजाब का डर जो है वो ऐसा होना चाहिए। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि बेहतरीन खियार उम्मत कौन है, उम्मत के बेहतरीन अफराद कौन है, कि एक तरफ तो रब की रहमत की वसअत पर खुश होते हैं और लोगों के सामने उसका बयान करते हैं, और दूसरी तरफ उसके अजाब की शिद्दत के खौफ से तन्हाई में रोते भी। और ये जो अल्लाह के अजाब से डरना है, उसका खौफ करना है और उसके खौफ की वजह से जो रोना है, ये कितना अजीम है। हदीस मुबारक है, शुअबुल ईमान की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मोमिन की आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हैं अगरचे मक्खी के सर के बराबर हो, मामूली मामूली से मक्खी के सर के बराबर हो, फिर वो आंसू उसके चेहरे के जाहरी हिस्से को पहुंचे तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देता है। यानी इतना मामूली सा भी रोना खौफे खुदा में ये बंदे पर जहन्नम के हराम होने का जरिया बन जाता है। तो लिहाजा अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना भी बड़ा अजीम है और हमारा ईमान है, और अल्लाह का डर और खौफ होना ये भी हमारा ईमान है और हमारा बहुत आला दर्जे का अमल है। और तीसरा, सुबह शाम खुदा को याद करना। तो सुबह शाम खुदा को याद करना जो है खुदा से मोहब्बत की अलामत भी, ये खुदा के जिक्र से और याद से मोहब्बत की अलामत भी, और ये उस जिक्र के अनवार को अपने दिलों के अंदर उतारने की सूरत भी है। अब ये जो तीन औसाफ बयान किए कि बेहतरीन लोग कौन, बेहतरीन उम्मती कौन, तो एक तरफ जिनकी रहमत पर उम्मीद बड़ी अजीम, दूसरी तरफ जिनके अंदर खौफ खुदा बहुत ज्यादा, और तीसरी तरफ जो सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाले हैं। तो अब हमारे लिए इसमें क्या है कि हम अपने अंदर ये औसाफ कैसे पैदा करें, ये तीनों खुसूसियात जो है ये हमारे अंदर पैदा हो जाए कैसे, तो उसका तरीका मैं अर्ज करता हूं। पहली बात, अल्लाह ताला की रहमत की वसअत पर खुश होना, तो ये खुशी दिल से निकले और चेहरे और जबान से जाहिर हो। अल्लाह की रहमत पर खुशी और उसकी रहमत की उम्मीद ये दिल में पैदा हो और उसका जहूर हमारी जबान और हमारे चेहरे के तासुरात से हो, ये कैसे हो? इसके लिए चार चीजें, चार तरीके हैं, अगर वो अपनाए जाएं तो बंदे के दिल में खुदा की रहमत पे वैसी उम्मीद पैदा हो जाती है। पहली बात, कुरान मजीद की उन आयात का मुतालआ करें जिनमें अल्लाह की रहमत, उसकी तरफ से बंदों की बख्शिश और खुदा के बंदों पर लुत्फ व करम फरमाने का जिक्र है। तो कुरान की वो आयतें जो अल्लाह की रहमत को बयान करती हैं, जैसे ये आयत मुबारक व रहमती वासियत कुल्ला शी, और मेरी रहमत हर शह से ज्यादा वसी, या वो आयात कि जिनके अंदर है इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला, या वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान, या फरमाया ला तकनातु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, या हम सूरह फातिहा ही में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है, बहुत मेहरबान रहमत वाला। तो जो आयात मुबारका अल्लाह की रहमत, उसकी बंदों की बख्शिश फरमाने और बंदों पे लुत्फ व करम फरमाने को बयान करती हैं, उन आयात का मुताला करें। इसके हवाले से इंशाल्लाह भी बहुत जल्द एक किताब आने वाली है, मक्तबतुल मदीना से शाये होगी, तो उसमें इस तरह की आयात को सैकड़ों की तादाद में जमा कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह जब आप उन आयात का मुताला करेंगे और जरा धीरे धीरे, जरा तसल्ली के साथ, जरा तवज्जो के साथ, जरा दिल में जगह देते हुए आप उनको पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह दिल के अंदर अल्लाह ताला की रहमत पर जो उम्मीद है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो पहला तरीका कि अल्लाह की वसअत रहमत पर खुश होने का, कि कुरान की उन आयात का मुताला करें जिनमें रहमत का बयान है। दूसरा वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाकयात, सहाबा और औलिया किराम के वाकयात, कि जिनमें अल्लाह के उन पर खास फजल का जिक्र है, या उनमें से किसी ने तौबा की और अल्लाह ताला की तरफ से तौबा कबूल करने का जिक्र है, जैसे सहाबा किराम है, जैसे औलिया किराम है, बहुत सी चीजों से उन्होंने तौबा की, अल्लाह ताला ने कैसा नवाजा, अंबिया अलैहिस्सलाम पर खुदा ने कैसे कैसे कहां कहां रहमत फरमाई। तो आदमी इन कससुल अंबिया को, वाकयात अंबिया को, सीरतुल अंबिया को, सीरत सहाबा को और सीरत औलिया को इस नजर से पढ़े कि उसके सामने अल्लाह की रहमत का बयान खुल के आ जाए। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, खुद हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारी गफलतों और कोताहियों के बावजूद, हमारी जिंदगी के नाकिस अमाल के बावजूद, हमारी नाकिस नमाजों और नाकिस जो है वो रोजों और नाकिस दीगर नेकियों के बावजूद, अल्लाह ताला ने जिंदगी में किस किस मकाम पर हम पर कौन कौन सी रहमत फरमाई। तो जब हम गौर करते हैं कि खुदा की रहमतें कब से हमारे साथ हैं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, खुदा ने हमारे रिस्क का सामान तब किया और हमें रोजी तब दी जब हम दुनिया में भी नहीं आए थे, फिर आने के बाद माँ बाप को हम पर शफीक कर दिया, हम तो मेहनत से नहीं कमा रहे थे, हम तो मेहनत से नहीं खा रहे थे, लेकिन खुदा ने हमारे खाने का, हमारे पीने का, हमारे पहनने का, हमारे गर्मी सर्दी से बचने का, हमारे बीमारियों के से इलाज का हर तरह का इंतजाम खुदा ने फरमा दिया माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा करके। फिर उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो जिंदगी के हर मरहले पर हम पर कैसी कैसी रहमतें होती हैं, यानी कुछ तो वो है कि जो 24 घंटे हमारे साथ है, हमारी आंखें सलामत है, हमारे कान सलामत है, हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारी टांगे चल रही हैं, हमारा खून जो है वो दौड़ रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी सांस जारी है, हमारे बदन के आजा काम कर रहे हैं, यानी इस एतबार से तो नेमतों की जो फरावानी है वो तो हर वक्त जारी, ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, सूरज निकलता है, रोशनी होती है, दुनिया में रिस्क जो है वो पैदा हो रहा है, फल उग रहे हैं, खेतियां उग रही, अनाज उग रहा है, खाना पक रहा है, हम खा रहे, हजम हो रहा है, यानी इन चीजों को हम देखते जाएं तो ये लाखों करोड़ों में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मौके वो हैं कि जब हम किसी बड़ी मुश्किल में थे लेकिन खुदा ने बड़े प्यार से हमें उस मुश्किल से निकाल दिया, कोई ऐसी बीमारी आई कि लग रहा था पता नहीं क्या बनेगा, खुदा ने उस बीमारी से निजात दे दी, किसी ऐसी मुश्किल में आ गए, आजमाइश में आ गए कि समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कर्म से उस मुश्किल से ऐसा निकाला कि मुश्किल भी भूल गई कि कभी ये भी आई थी, तो बंदा अपनी जिंदगी में अपने ऊपर अल्लाह की रहमतों को याद करे, अल्लाह की नेमतों को याद करे। तो ये खुदा की रहमत पर उम्मीद बंधने का बहुत बड़ा जरिया। चौथा तरीका ये है कि लोगों के सामने भी बंदा अल्लाह की रहमत बयान करे। जैसे हमारा तरीका है ना कि हम हर वक्त मुसीबत का ही रोना ज्यादा रोते हैं। हमारे पास 100 नेमतें हैं, एक मुश्किल है, तो 100 नेमतें बयान नहीं करेंगे, मुश्किल बयान करेंगे। हमारे पास जो है अगर महाना 50,000 रुपये मिल रहे और किसी महीने 49 मिले, यानी कि 49,000 रुपये मिले, तो हम 49,000 मिलने का नहीं सोचेंगे, वो जो 1,000 नहीं मिला ना उसका बयान करेंगे। तो ये जो हम लोगों के सामने और दूसरों के सामने जो हम जहमतों का बयान करते हैं और रहमतों का बयान नहीं करते, जो मुश्किल का बयान करते हैं और नेमत का बयान नहीं करते, तो ये चीज जो है ये हमारे दिलों में मायूसी पैदा करती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला की रहमत का बयान करना ये शुरू करें, तो इससे भी बंदे के दिल के अंदर जो उमंग है और जो उम्मीद है वो बढ़ती है। तो ये पहली बात थी कि वुसअत रहमत पर खुश होने वाले खियारे उम्मत हैं, उम्मत के बेहतरीन अफराद हैं, तो इसका तरीका क्या। दूसरा जो वस बयान किया था वो था कि शिद्दत खौफ से पोशीदा रोते हैं, तो अल्लाह के अजाब के डर से रोना चाहिए। और ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत, सलफ सालिहीन का तरीका है, औलिया किराम की जिंदगियों में एक बहुत मरकजी अमल और बहुत आला दर्जे का अमल जो है वो यही वाला है। अब ये कैफियत अपने अंदर कैसे पैदा करें, अब उसका पहला तरीका, इसके भी चार तरीके बयान करता हूं। पहला तरीका कि रात के वक्त तन्हाई में बैठे अपने आमाल को याद करें, गुनाहों को याद करें या नेकियों की कोताहियों को याद करें, और उसके साथ कब्र और क्यामत का तसव्वुर करें। ऐसा तो नहीं है कि कब्र में नहीं जाना, ऐसा तो नहीं है कि हमने क्यामत में नहीं उठना। हर बंदे ने मरना है और हर बंदे ने क्यामत में उठना, और ये हमारा ईमान है। मौत पर भी ईमान है कि मर रही, और क्यामत में उठने पर भी ईमान है। तो जब ये हमारे ईमान का हिस्सा है तो अपना रात का थोड़ा सा वक्त, भले वो 5 मिनट हो, वो थोड़ा सा इस पे लगा दें। जब हम 5 मिनट भी इस पे लगाएंगे तो फिर हमारे दिल में खौफ पैदा होगा, कब्र का भी आखिरत का भी, और यही बेसिकली खौफे खुदा की सूरत है। तो एक तरीका तो ये। दूसरा, कुरान मजीद की तिलावत करें और उन आयात पर गौर करें जिन आयात में अल्लाह की तरफ से अजाब का जिक्र है, जैसे अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, बेशक मेरा अजाब ही दर्दनाक अजाब है। इसके अलावा और सैकड़ों आयात हैं जो जहन्नम और खुदा के अजाब के बयान पर है। इस पर भी इंशाल्लाह जो मैंने किताब अभी बयान की थी रहमत वाली, तो उसमें ये वाली आयात भी होंगी। तो कुरान मजीद को एक मर्तबा इस तौर पर पढ़ें कि जो अजाब इलाही की आयतें हैं हम उन पर थोड़ा सा तवक्कुफ करें, थोड़ा सा ठहरें, थोड़ा सा गौर करें। तीसरा तरीका कि वो दुआएं जो दिलों को झंझोड़ने वाली हैं, जो दिलों को शेक करने वाली, हिलाने वाली हैं, उन दुआओं को उनके माना पर गौर करके थोड़ा सा पढ़ें। जैसे तकरीबन अक्सर बेशतर दुआएं ऐसी मिलती हैं जिनके अंदर इस तरह का मफहूम होता है कि बंदे का दिल जो है वो लरजता है उसके ऊपर। जैसे एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यकूलून वाग़फिर ली मा ला यअलम, ऐ अल्लाह जो लोग कहते हैं उस पर मेरा मुआख़ज़ा ना करना, और जो लोग जानते नहीं हैं, जो मेरे आमाल जानते नहीं हैं, उन बातों पर मुझे बख्श देना, यानी मेरे बुरे आमाल जो लोग नहीं जानते उन पर मुझे बख्श देना। तो इस तरह की जो दुआएं हैं वो पढ़ें और थोड़ा सा उसके माना पे गौर करके पढ़े। चौथा तरीका दिल में खौफ खुदा पैदा करने का वो ये है कि तन्हाई में मुराकबा करें, यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर बैठ जाए और उसकी अजमतों और उसकी कुदरतों के मज़ाहिर के हवाले से सोचे। तो जितना बंदा खुदा की अजमत के ऊपर गौर करता है उसके दिल में रोब और हैबत और खौफ उतना ही पैदा होता है। इसीलिए जिसके दिल में खुदा की मारिफत ज्यादा होगी, उसके दिल में खशियत ज्यादा होगी, उसके दिल में खुदा का खौफ ज्यादा हो। तो ये चार तरीके हैं कि रात की तन्हाई में अपने अमाल को याद करें, कब्र कयामत पर गौर करें, कुरान की वो आयात के जिनमें अजाब का जिक्र है उन पर गौर करें, दिल को झंझोड़ने वाली जो दुआएं हैं उन्हें पढ़ें और उस पर गौर करें, और तन्हाई के अंदर कुछ देर रोजाना मुराकबा करें। इसके बाद तीसरा वस, बेहतरीन उम्मती जिन्हें करार दिया गया वो हैं कि जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। अब ये जो तरीका है, ये जो सिफत है, ये अपने अंदर पैदा करने का तरीका बड़ा आसान है। थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो बंदा सुबह शाम खुदा को याद करने वाला बन जाता है। पहली बात, सुबह शाम के जो अज़कार, जो औराद, जो वज़ाइफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, उन अज़कार को याद कर लें और उसे पढ़ना शुरू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे सुबह शाम जो है वो तीन तीन मरतबा बिस्मिल्लाह, या सुबह शाम जो है वो तीन तीन मरतबा रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। तो इस तरह के बहुत से आमाल हैं जो छोटे छोटे हैं अपने जाहिर के अल्फाज के एतबार से, तो उन्हें बंदा याद कर ले और उन्हें सुबह शाम पढ़ना शुरू कर ले तो ये सुबह शाम ही खुदा को याद करने वाला बन जाए। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। दूसरा, जो हम इबादत करते हैं इनके बाद जो अज़कार मरवी हैं वो पढ़ें। जैसे नमाजों के बाद नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम मुख्तलिफ औराद पढ़ते थे, जैसे फजर के बाद जो है वो ला इलाहा इल्ला अंता वहदक ला शरीक लक ये मजकूर है। अच्छा, इसके अलावा और जो है ना कुछ दुआएं मजकूर हैं। तो अब जो जो नमाजों के बाद, इसी तरह ये तस्बीहात जो है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये पढ़ने का जिक्र है, तो नमाजों के बाद जो अजकार पढ़ने का जिक्र है इन्हें याद कर ले और ये पढ़े। तो बंदा नमाज सुबह भी पढ़ता है, फजर की पढ़ता है, शाम में भी पढ़ता है, जोहर असर मगरिब ये शाम में आ जाती। तो अब अगर इस पर अमल करना शुरू कर दे तो सुबह शाम खुदा को याद करने वाला बन जाएगा। तीसरा, तीसरा ये है कि जिक्र इलाही को एक बोझ समझ के नहीं बल्कि शौक समझ के अपनी जिंदगी में शामिल कर। थोड़ी सी कोई भी तस्बीह आप पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफसल कलिमा, 100 मरतबा सुबह पढ़ लें, 100 मरतबा शाम पढ़ लें, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम 100 मरतबा सुबह पढ़ लें, 100 मरतबा शाम पढ़ लें। तो इस तरह की जो छोटे छोटे अल्फाज, थोड़े से अल्फाज पर मुश्तमिल अजकार हैं तो सुबह शाम जरा शौक से पढ़ लें। इतनी ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ने में 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते और आप तसल्ली से पढ़े। आप 3 मिनट सुबह पढ़ लिया, 3 मिनट शाम पढ़ लिया और क्या पढ़ा, सबसे अफजल कली, सबसे अफजल कली दुरूद शरीफ पढ़ा। तो क्या पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहारे मोहब्बत के बेहतरीन कलिमात। तो इनको सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दिया। चौथा तरीका यह है कि अपने दिल को जिक्र का आदी बनाए, कि दिल जो है वो अल्लाह 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 ये करता रहे करता रहे, हत्ता कि ये दिल की आदत बन जाए। जब दिल की आदत बन जाती है तो फिर हाल ये होता है कि बंदा सो के उठता है और जैसे ही उसकी तवज्जो दिल की तरफ जाती है तो पता चलता है कि दिल अल्लाह अल्लाह करता है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि बंदा अपने दिल को जिक्रे इलाही का आदि बना दे। तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो ये सुबह शाम खुदा को याद करने का बड़ा आला तरीका है। अब अगली हदीस मुबारक के बेहतरीन अफराद और बेहतरीन बंदे जो हैं उनके हवाले से, मुसनद अहमद की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनादे में शरीक थे। आपने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे के बारे में ना बताऊं? फिर खुद ही इरशाद फरमाया कि वो जो बेहतरीन बंदा है वो कौन है। फरमाया, वो कमजोर और ज़ईफ समझा जाने वाला, बोसीदा लिबास पहनने वाला शख्स जिसे कोई अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन उसकी शान ये है कि अगर वो किसी बात पर अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम जरूर पूरी फरमा देता है। फरमाया, ये बेहतरीन इंसान, ये बेहतरीन लोग हैं कि जो ज़ाहरी एतबार से कमजोर से हैं, कोई उनकी खास अहमियत नहीं है, पुराना सा लिबास पहना हुआ और लोगों के दरमियान उनका कोई खास मकाम नहीं है, लेकिन वो खुदा से जुड़े हुए, वो खुदा की बारगाह के हाजिर बाश, और उनका खुदा से ताल्लुक बड़ा मजबूत है। तो जाहिर उनका ऐसा है, लेकिन इसके साथ उनका बातनी मकाम ऐसा है कि अगर वो कसम खा ले तो खुदा उनकी कसम पूरी कर देता है। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा अगर मजीद एक्सप्लेन करूं तो आप ये समझ लें कि हमें कोई काम हो तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह ये काम करते हैं। हम बाद ये होता है कि बहुत मरतबा दुआ करें तब जाके काम होता है, बाद दो चार मरतबा अर्ज करते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन ये लोग कौन है? जो इनका मकाम बयान किया वो ये है कि ये अभी दुआ के लिए हाथ नहीं उठा रहे, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम ऐसा होगा, अल्लाह ताला ऐसा कर देता है, अल्लाह ताला ऐसा कर देता है। यानी ये अभी इन्होंने दुआ नहीं मांगी, लेकिन चूंकि खुदा के साथ इतना गहरा ताल्लुक है, उसके साथ मोहब्बत का, खौफ का, तवक्कुल का, कुर्ब का, रजा का, उसके फैसलों पे राजी होने का इस कदर गहरा ताल्लुक है कि इनकी जबान से निकल जाता है खुदा पूरा कर देता है। तो हकीकत में ये औलिया किराम कि जिनकी जबान से निकले हुए अल्फाज पूरे हो जाते हैं। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि बाद ये जो बुजुर्गों के पास जाके कहा जाता है ना, हजरत अपनी जबान से कह दे ये काम हो जाएगा, तो उनकी जबान से कहलवाया इसलिए जाता है कि इनकी जबान से अदा हो गया तो काम हो गया, तो यूं उनकी जबान से फिर अदा करवाया जाता है। तो ये एक बड़ा आला दर्जे का मकाम है, लेकिन ये भी मकाम जो है ये वो नहीं कि जो हासिल नहीं हो सकता, ये भी हासिल हो सकता। खुदा ने अगर किसी को मकाम दिया है तो उस मकाम को हासिल करने के कुछ जराए और कुछ उसके असबाब भी पैदा फरमाए, जिनके जरिए डायरेक्ट या जिनकी वजह से फजल इलाही मुतवज्जे होता है और बंदे को वो मकाम मिल जाता है। वो क्या है? हदीसों मार्ग में जो जिस तरह का इनको बयान किया गया और फिर जो दीगर हदीस के अंदर इस तरह के मजामीन हैं, उन सबको सामने रखें तो उससे जो नतीजा निकलता है कि ऐसा बंदा कैसा बनता है कि अगर वो कसम खा ले तो खुदा उसकी कसम को पूरा कर दे, ऐसा आदमी कैसे बन सकता है, उसका तरीका मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात यह है कि आदमी आजजी और इनकिसारी अपनाए, तकब्बुर से बचे, बड़े बोल बोलने से बचे, खुद को दूसरों से ऊपर, उनसे बड़ा और उनसे बेहतर ना समझे, दूसरों की इज्जत करे, हत्ता के नादार और कमजोर लोगों के साथ भी इज्जत के साथ मिले। यह पहली बात, आजजी इख्तियार करना। दूसरी बात है सादगी इख्तियार करना, लिबास, रिहाइश, बातचीत और जिंदगी के तौर तरीके में इन सब के अंदर तकल्लुफात को छोड़ दें, सादगी हो, शोहरत और नामो नमूद और इस तरह की चीजों की तलब से बचें। तो दूसरे नंबर पे है सादगी होनी चाहिए, पहला आजजी, दूसरा सादगी, तीसरा है अल्लाह से सच्चा ताल्लुक। और अल्लाह से जो सच्चा ताल्लुक है उसकी बुनियाद है अबदियत, बंदगी, खुदा का बंदा बन के रहना, और इस बंदगी के साथ खुदा की अजमत पर यकीन और अमल के अंदर खुदा की रिजा के हुसूल को अपना मकसद असली बनाना, ना वाह वाह, ना शोहरत, ना दुनियावी मफाद। तो ये तीसरी बात है खुदा से सच्चा ताल्लुक। चौथी बात है कसरत से जिक्र इबादत, लोगों के सामने नहीं लेकिन वैसे कसरत से जिक्र और इबादत में खुद को मशगूल रखें। जैसे नमाजें हैं तो नमाज बाजमात, जैसे मर्द है तो नमाज बाजमात पढ़ेंगे, किसी वजह से जमात जो है वो वाजिब नहीं है तो वैसे नमाज पढ़ेंगे, या खवातीन है कि वैसे भी गैर जमात के पढ़ेंगे, और तहज्जुद का अहतमाम, इशराक व चाश्त, अवाबी, तिलावत कुरान, इस्तिगफार, जिक्र इलाही, दुरूद पाक, जबान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रखना। तो ये जो कसरत से जिक्र इबादत है ये बंदे को ऐसा बना देती है। तो ये चौथी बात है। पांचवी है अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखना, असबाब से ज्यादा खालिके असबाब पर नजर रखना, असबाब इख्तियार करना, लेकिन यूं नहीं कि बस असबाब ही सब कुछ है, बल्कि असबाब भी इसलिए कि मालिक ने हुक्म दिया है असबाब इख्तियार करो, اور جو اصل فاعل حقیقی ہے اور جو مسبب حقیقی ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ کرے گا تو کام ہوگا، وہ نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چاہے گا تو ساری دنیا نہ چاہے، اس کے چاہنے سے ہو جائے گا، اور وہ نہ چاہے تو ساری دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو خدا پر ایسا بھروسہ اور اس کے اوپر ایسا اعتماد اور توکل۔ چھٹی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو اسے کرنے کی کوشش کرنا، خواہ وہ کسی سے پیار سے مل لینا، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کے ساتھ سلام لے لینا، راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، خواہ وہ کسی کو جو ہے وہ 10 روپے کی 5 روپے کی کوئی چیز ہی مشکل وقت میں دے دینا۔ یعنی نیکی کرنے کے طریقے سوچنا، نیکی چھوڑنے کے بہانے نے، نیکی کرنے کے طریقے سوچنا نیکی چھوڑنے کے بہانے نے۔ تو یہ اس طرح کا بننے کا ایک جو چھٹا طریقہ وہ یہ ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ جتنی نیکی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کرنا۔ ساتویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غفلت میں نہ پڑ جانا، بلکہ اللہ کی یاد میں مگن رہنا۔ لوگوں کی اکثریت یہ غفلت میں ہوتی، لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کا موضوع دنیا، ان کا موضوع مال، یا ان کا موضوع گناہ، یا ان کا موضوع فضولیات۔ تو ان لوگوں کے ساتھ خود کو غفلت میں ڈال لینے کی بجائے اللہ کی یاد میں لگا کے رکھنا۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو ان اوصاف کے اپنانے پہ لے آتا ہے کہ طبیعت میں عاجزی ہو، زندگی میں سادگی ہو، خدا سے گہرا تعلق ہو، کثرت سے ذکر و عبادت ہو، خدا پہ کامل بھروسہ ہو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے ساتھ غافل نہ بنیں بلکہ خدا کی یاد میں رہیں، تو یہ اوصاف اپنانے سے آدمی یہ والا وصف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی بات پہ اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا بننے کا جو طریقہ ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، ہے ہمت یہ تیری سہارا تیرا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔